मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज से मेरी 15 दिन की क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले 15 दिनों में मेरा हर वक्त अब आए हुए स्टूडेंट के साथ व्यतीत होगा। रोजाना हम लोग मिलकर कम से कम 6 घंटे इस पर बातें करेंगे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, और बीच बीच में भी जो समय के छोटे छोटे टुकड़े होंगे उसके अंतर्गत भी जो स्टूडेंट हैं अपनी समस्याओं को लेकर के मुझसे व्यक्तिगत तौर पर बातचीत कर रहे होंगे। कुल मिलाकर यह कि मेरे पास अब इस दौर में समय का ऐसा कोई टुकड़ा नहीं बचेगा, और सच पूछिए तो थोड़ी सी थकान भी हो जाने के कारण ऐसी स्थिति नहीं रह जाती है कि मैं डेली ऑडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूं। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो आप डेली ऑडियो लेक्चर कुछ दिनों तक सुनेंगे वे सारे के सारे लेक्चर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, यानी कि पहले से ही लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। चूंकि लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे इसलिए स्वाभाविक है कि उसमें करेंट अफेयर्स का इनपुट आपको सुनने को नहीं मिलेगा। स्वाभाविक है कि ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके मन में एक सवाल उठेगा, और हो सकता है कि आप थोड़े से असमंजस में भी पड़े कि फिर इस बीच के करंट अफेयर्स का होगा क्या। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपको सोचना ही चाहिए। चिंता की कुछ लकीरें तो आपके माथे पर आ ही जानी चाहिए, लेकिन मैं इन लकीरों को दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा ये बताने जा रहा हूं। आप इसकी बिल्कुल चिंता न करें। मैं चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हूं, न्यूज सुनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, अखबार पढ़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। चाहे मैं जहां भी रहूं, जिस स्थिति में रहूं, यह मुझे करना ही होता है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स या कह लीजिए जनरल नॉलेज है वो तो एक फ्लोइंग रिवर की तरह है। यदि आपने उसे थोड़ा सा भी छोड़ दिया तो पानी बह करके आगे निकल जाएगा, आप उसे नहीं पकड़ सकते। तो ये काम तो मुझे चाहे जहां भी रहूं जिस स्थिति में भी रहूं लगातार करते ही रहना पड़ता है। इसका मतलब है कि करंट अफेयर्स से मैं लगातार जुड़ा रहूंगा। जो भी आप सबके लिए महत्वपूर्ण बातें होंगी वे मेरे पास नोट होंगी, और जब मेरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो उन सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स की चर्चा मैं आपसे करूंगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसलिए इस बात को लेकर चिंतित होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि प्री रिकॉर्डेड जो मेरे लेक्चर होंगे उसमें विषय क्या होगा। जो भी स्टूडेंट मेरी इन स्थितियों को जानते हैं उनके पास इस तरह का पहले का अनुभव है। उन्होंने इस बीच में काफी विषय मुझे सुझाए कि सर इन दिनों का उपयोग इन विषयों के बारे में कर लेना चाहिए, इन विषयों को आप डिस्कस कर लें। मैंने उन पर विचार किया, विचार करने के बाद फिर एक जो मैं फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचा हूं वह यह है कि मुझे बेहतर होगा कि जो भारतीय दर्शन है उस पर बातचीत करने का मौका दिया जाए, इंडियन फिलॉसफी। और जब मैं इंडियन फिलॉसफी की बात कर रहा हूं तो चूंकि लेक्चर्स की संख्या सीमित है इसीलिए सीधे सीधे मैं आप सबसे जो भारत का प्राचीनतम दर्शन शास्त्र रहा है उस पर बातें करूंगा। जब मैं दर्शन शास्त्र की बातें कर रहा हूं और आपके कान में पड़ रही हैं तो हो सकता है कि आपका चेहरा थोड़ा सा उतर गया हो, क्योंकि जब भी फिलॉसफी की बात की जाती है तो पता नहीं लोगों के दिमाग में यही बात आती है कि अरे फिर तो बड़ी बड़ी बातें होंगी, काल्पनिक बातें होंगी, रूखी बातें होंगी, सुनने में मजा नहीं आएगा, बोर होंगे, इस तरह की बातें दिमाग में आती हैं। लेकिन यहां फिर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं बात भले ही दर्शन शास्त्र पर करूंगा लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बोर न होने दूं। दर्शन शास्त्र की जो बिल्कुल बेसिक बातें होती हैं मैं वे आपके सामने रखूंगा, और दर्शन शास्त्र की बातें रखने के साथ ही साथ मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी घटना को कैसे पढ़ा देखा समझा जाना चाहिए ताकि आपके अंदर एक क्षमता विकसित हो सके। और वैसे आप जानते हैं कि डेली ऑडियो लेक्चर का मेरा मकसद भी यही होता है, बजाय इसके कि मैं इवेंट की आपको जानकारी दूं, आपने महसूस किया होगा कि इवेंट के अंदर छिपे हुए जो जड़ें हैं, जो उसके रूट्स हैं, मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूं ताकि आपको मछली परोसने की बजाय मैं मछली पकड़ने के योग्य बना सकूं। मैं कितना सफल हो पाता हूं यह तो आप सब बताएंगे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है और फिलॉसफी के मामले में भी मेरी कोशिश यही रहेगी। अब मैं थोड़ी सी बात इसके बारे में आप सबसे करना चाहूंगा कि ये जो फिलॉसफी है जो आगे आप लेक्चर्स पर सुनेंगे ये आपके किस काम आएंगे। मैं ये मान करके चलता हूं कि जो सिविल सर्विस के लिए इच्छुक स्टूडेंट है उसे फिलॉसफी का ज्ञान तो होना ही चाहिए। वैसे फिलॉसफी का ज्ञान हर पढ़े लिखे व्यक्ति को होना चाहिए क्योंकि यह एक जीवन दृष्टि देता है, लेकिन जो सिविल सर्वेंट है उसके लिए तो निहायत ही जरूरी है कि वो फिलॉसफी, जो बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज है, केवल भारत की नहीं बल्कि दुनिया के जो दूसरे फिलॉसफर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी उसके पास होनी ही चाहिए। ऐसा क्यों? दोस्तों देखिए, जब आप फिलॉसफी पढ़ रहे होते हैं, फिलॉसफी को समझ रहे होते हैं और उस पर विचार कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को ट्रेंड कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं। किस चीज के बारे में प्रशिक्षित कर रहे हैं? इस चीज के बारे में प्रशिक्षित कर रहे हैं कि जब कोई भी घटना घटित होती है तो उस घटना को कैसे देखा जाना चाहिए, कैसे समझा जाना चाहिए। और जब एक बार आप किसी घटना को देखकर समझ लेते हैं तो सीधी सी बात है कि आप फिर उसके उपाय भी सुझा सकते हैं कि ये जो घटना घटी है, इस घटना के कारण ये जो समस्या पैदा हुई है, इस समस्या की समाप्ति के लिए या इसको सुलझाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने लॉजिकल तरीके से घटना का विश्लेषण कर लिया तो जो आप उपाय सुझाएंगे वो बहुत ही व्यावहारिक किस्म के होंगे। आपको क्या यह नहीं लगता कि यह जो क्षमता है यह बहुत ही अद्भुत क्षमता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है? यानी कि फिलॉसफी आपके अंदर एक दृष्टिकोण पैदा कर देती है, आपको लॉजिकल बना देती है, आपकी तर्क शक्ति को मजबूत बना देती है। अदरवाइज घटनाओं को देखने का देखिए तरीका बड़े आराम से आप भावनात्मक तरीका अपना सकते हैं और ज्यादातर लोग इमोशनल तरीका ही अपनाते हैं। जब हम इमोशनल तरीके को अपनाते हैं और तर्क शक्ति को किनारे कर देते हैं तो हम किसी दूसरे के ग्रिप में आ जाते हैं, घटनाओं के ग्रिप में आ जाते हैं। और जब घटनाओं के ग्रिप में आ जाते हैं तो हम कभी भी उस समस्या का समाधान सही सही नहीं बता सकते। अब आप सोच करके देखिए कि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, रात दिन आपके सामने दूसरों की समस्याएं आती रहेंगी और उनको सुलझाने का दायित्व तो आपके ऊपर होगा। आप उन्हें कैसे सुलझाएंगे यदि आपके पास तार्किक दृष्टि नहीं है? तो दोस्तों ये आपके अंदर एक तार्किक दृष्टि पैदा करती है जो बहुत बड़ी बात है, और केवल सिविल सर्विस के लिए जरूरी नहीं है, पूरी जिंदगी के लिए जरूरी है। इसलिए इन लेक्चर्स को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात, कुछ ही महीनों के बाद प्री एग्जाम होने हैं। प्री एग्जामिनेशन में मैंने देखा है कि 100 क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं उसमें से एवरेज 2 क्वेश्चन फिलॉसफी से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो एंशियंट फिलॉसफी से जुड़े हुए हों, कभी कभी वो मेडिवल से भी आ जाते हैं। सामान्यतः 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है कि मेरी बातचीत जो मैं आप सबसे करूंगा वो आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर दे, सीधे सीधे मदद कर दे। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि आप सबको सीधे सीधे मदद न करे लेकिन जो आपकी तार्किक शक्ति विकसित कर देगी ये जो लेक्चर्स हैं, लेकिन यदि इन लेक्चर्स के कारण आपकी तार्किक शक्ति विकसित हो गई तो मान करके चलिए कि जो दूसरे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होंगे, अनुमान के आधार पर आप सॉल्व करेंगे, उनमें यह क्षमता आपकी मदद करेगी। इसलिए यह मुझे महत्वपूर्ण मालूम पड़ा। दूसरी बात, आप कभी मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को उठाकर देखिए, उनके टॉपिक्स को देखिए। आप ऐसा कीजिए और दिमाग को बिल्कुल खुला छोड़कर देखिए। ये मत सोचिए कि अरे ये तो मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन है और ये बड़े टफ होते हैं, इनमें तो 40% मार्क्स भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसको भूल जाइए, आप क्वेश्चंस पढ़िए। आप पाएंगे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं वो बड़े व्यावहारिक किस्म के क्वेश्चंस होते हैं और बड़े प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत प्यारे और बहुत ही व्यावहारिक किस्म के। इसका मतलब है कि जो प्यारे और व्यावहारिक क्वेश्चन होंगे उनका जो आंसर होगा वो आपके अपने दिमाग में बनेगा, आपको अपने दिमाग में आंसर तैयार करके और कॉपी पर उतारने हैं। अब सवाल यह है कि आप ऐसा करेंगे कैसे? वो कौन सी आपके पास कसौटी होगी या कौन सा सांचा होगा जिस सांचे में आप अपने आंसर को ढाल सकेंगे? दोस्तों फिलॉसफी वो सांचा होता है, जिनके पास फिलॉसफी की पृष्ठभूमि होती है वो बड़े आराम से उनके उत्तर दे लेते हैं। भले ही हो सकता है कि उसके बारे में, उत्तरों के बारे में जो फैक्ट्स होते हैं उनकी बहुत अच्छी जानकारी उनके पास न हो और इसके आधार पर वो फैक्ट्स न दे सके, न लिख सके, लेकिन वे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन क्या चाह रहा है उस चाहने की पूर्ति वो कर देंगे। फैक्ट की कमी रह जाएगी तो कोई बात नहीं, और ऐसा तो है नहीं कि आप तैयारी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, टॉपिक्स की तैयारियां करेंगे, बस उन फैक्ट्स का इस्तेमाल जब आप बकायदे फिलॉसफी के संदर्भ में करते हैं तो उनकी चमक कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और एग्जामिनर आंसर देखते साथ ही बिल्कुल सोचता है कि अरे अरे वाह ये क्या आंसर लिखा है स्टूडेंट, यार बस वहीं बात बन जाती है। तो पूरे के पूरे जो आपके पेपर्स हैं जनरल स्टडीज के, उनमें यह मदद करेगा, जो आपके फिलॉसफी की जानकारी वाले लेक्चर हैं वे। इसके बाद आपको एक निबंध का पेपर देना होता है जिसमें दो निबंध लिखने होते हैं और 250 नंबर उसमें होते हैं, निहित होते हैं। आपको नहीं लगता कि जो फिलॉसफी की जानकारी है निबंध लिखने में आपके कितनी जबरदस्त मददगार हो सकती है? पिछले साल जो मेंस में कुछ निबंध पूछे गए हैं उन निबंधों को उठा करके देखिए, उन निबंधों के ज्यादातर जो आधार है, जो बेसिक्स है, वो फिलॉसफी है, और उससे भी बड़ी बात है कि इंडियन फिलॉसफी है। मेरा दावा है कि जो उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलॉसफी रहे होंगे या ग्रेजुएशन में जिन्होंने फिलॉसफी ली हुई होगी या जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा फिलॉसफी से, उनको ये निबंध बड़े प्यारे लगे होंगे और उन्होंने बहुत अच्छे निबंध लिखे होंगे और उसमें खूब सारा वो अंक बटोरेंगे भी फिलॉसफी में, क्योंकि ये ताकत होती है, क्योंकि आपके अंदर जो तीसरी आंख होती है ना भगवान शिव की, वो फिलॉसफी ही पैदा करती है। तो निबंध लिखने में सीधे सीधे ये जो लेक्चर्स हैं जो अभी आगे चल करके आप सुनेंगे आपकी मदद करेंगे और जबरदस्त रूप से मदद करेंगे। दोस्तों ये मेरे कहने की बात नहीं है, जब आगे चल करके हम विषयों पर बात करेंगे तब आपको महसूस होगा कि सही मायने में आपने लेक्चर्स तो कुछ ही सुने हैं लेकिन जो कुछ भी सुने हैं उनने आपके व्यक्तित्व और मस्तिष्क के निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं चाहूंगा कि यदि आपको ऐसा लगे तो प्लीज मुझे मेल लिखकर सूचित भी करें, और यदि बीच बीच में आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं कुछ अंदर हो रहा है तो प्लीज मुझे बताएं। ये मत सोचें कि इस बीच में जो आप मेल्स लिखेंगे उन्हें मैं नहीं देखूंगा, नहीं पढ़ूंगा। आप लोगों के जो भी मेल्स आएंगे मैं रोजाना पढ़ूंगा, रोजाना देखूंगा, रोजाना उसमें से पॉइंट्स लूंगा। आप लोगों के अगर कुछ सजेशन होंगे तो वो मेरी जो गतिविधियां हैं वो लगातार बनी रहेंगी, बस रिकॉर्डिंग करने की स्थिति निर्मित नहीं हो पाती है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, अब मुझे इजाजत दें, नमस्कार।